सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमः जन्मस्य जन्मदेशे येन विहानेन जन्मकालमे नादं जिनेन नियदं जन्मं वा अहव मरणं वा संतस्य सन्निदेशे तेन विहानेन तन्निकालमे कोसक्क दिवारेदुं इन्दो वा सहजनिन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवानि सौवपर्चाये सो सद्दिच्छी सुस्थो जो संकदितो हुपोदिच्छी। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन पुस्तक के आधार से हमने क्रमबद्ध पर्याय जो जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है उसकी अभी चर्चा हम करते आए हैं। पेज नंबर 83। अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा था वो है कार्तिकेय उपेक्षा गाथा में से। हमें ऐसा लगना संभव है कि यहाँ तो अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय किसी को नमस्कार नहीं किया है और इसको आप मंगलाचरण रूप में क्यों ले रहे हो। ओम नमः सिद्धे या कहकर तो हमने सिद्धों को नमस्कार किया है। जो सिद्ध है वे अरिहंत अवस्था पूर्वक ही होते हैं। अरिहंत भगवान वो मुनि अवस्था पूर्वक ही होते हैं। और यहाँ जो हम सर्वज्ञ का जो स्वरूप है एक क्रमबद्ध पर्याय का जो स्वरूप है उसको देखने से हमने सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित किया है। अकेले के अकेला सर्वज्ञ का नाम लेना अरिहंत सिद्धों का नाम लेना और नमस्कार करना इतने ही उनको नमस्कार वो ठीक नहीं है यदि उनका स्वरूप पता नहीं है। सर्वज्ञ का सही स्वरूप पता न हो और हम जन्म से लेकर आज तक सर्वज्ञ को नमस्कार करते आए हैं तो भी हमारा वो नमस्कार सच्चा नमस्कार नहीं कहलाएगा। हमने यहाँ जो कार्तिकेय उपेक्षा की गाथा पढ़ी है उसमें क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता को हमने याद किया है यानी हमने सर्वज्ञता स्वरूप जाना है। और ये बात आती है कि जो सर्वज्ञता स्वरूप जानते हैं वो अपने आत्मा को जानते हैं। जो अपने आत्मा को जानते हैं उनको समय दर्शन होता है उनका मिथ्यात्व लय हो जाता है। कल हमने 83 पेज पर शुरू में पढ़ा था गुजराती पेज नंबर देन सर्वज्ञ ये जो पहले हमने 6 पॉइंट पढ़े थे कि समय दर्शन होते ही कहो या सर्वज्ञ का निर्णय होते ही कहो या क्रमबद्ध पर्याय को जानते ही कहो क्या क्या बातें होती है तो उसके हमने 6 पॉइंट देखे थे। उसको फिर दोबारा देखते कि सर्वज्ञता के निर्णय से क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है। आज तक जो मिथ्या मति थी वस्तु तो व्यवस्थित ही है अनादि से अनंत काल तक सारे ही वस्तुएं सुव्यवस्थित है वो अपने से स्वतः सिद्ध है और उनका परिणमन भी स्वतः सिद्ध है। वो भी किसी दूसरे द्रव्य ने आकर कर दिया तो परिणमन हुआ ऐसी बात नहीं है। जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध है उसका द्रव्यत्व जो स्वतः सिद्ध है वैसे उसका उत्पाद भी स्वतः सिद्ध है। तो क्या कहते कि अपनी वृत्ति जो अव्यवस्थित थी वस्तु तो व्यवस्थित ही है परंतु हमने मान लिया था कि पर वस्तु अव्यवस्थित है तो उसकी व्यवस्था में हम जुट गए थे। जब हमारी मति व्यवस्थित हो गई तो हमें ख्याल आ गया कि सारे ही वस्तुएं अपनी अपनी सुव्यवस्थित व्यवस्था में निबद्ध है। दूसरा है कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है जब पता चल गया कि प्रत्येक द्रव्य का जो जो कार्य है जो जो पर्याय है वो उस द्रव्य में अपने अपने से हो ही रहे हैं कोई किसी अन्य का कर्ता नहीं है कर ही नहीं सकता तो आज तक जो पर कर्तृत्व का अभिमान था वो गल जाता है छूट जाता है। कर्तृत्व का अभिमान ज्ञाता दृष्टा रह जाता है। तीसरे पानी में आ गई बात सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है। जीव को अपने ज्ञाता दृष्टा भाव जो है उसी में अहमपना हो जाता है पहले तो कर्तृत्व भाव, मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ऐसी अज्ञान जनक मान्यता थी। अज्ञान दूर होते ही वो परकर्तृत्व भाव भी मिट गया, अब सहज ज्ञाता दृष्टा रह गया। परमे फेरफार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है, इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है। हमें तो पर संबंधी जो हमने ठान ली है या जो मानते हैं और जो करने रहने का अभिमान है या करने की जो चिंता है, आकुलता है, तो आकुलता के कारण हम दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी हमारी आकुलता दूर नहीं होती है। जब परमे फेरफार करने की बुद्धि हट गई तो उस संबंधी जो आकुलता हो रही थी वो भी मिट गई। असीम आनंद प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव हो जाता है। तो जो परमात्मापन प्रकट होगा वहाँ जो अनंत आनंद और शांति होगी उसकी तो बात नहीं, अभी समय दर्शन प्रकट होते ही इतनी सारी बातें बन जाती है। सर्वज्ञता के निर्णय और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते। ये यहाँ धर्म के बारे में उधारी का धंधा नहीं होता, लेकिन पुण्य करो या पाप करो उसके कारण कर्म बंधेंगे और उसका फल कुछ काल बाद मिलेगा, उसमें भी बीच में आबाधा काल चला जाता है और उसके पश्चात उसका उदय होगा और उदय होने तक वो उसी रूप होगा इसकी गारंटी नहीं है। अभी बहुत पुण्य बांधा परंतु वो पुण्य पुण्य रूप से ही रहे, संक्रमित होकर पाप रूप न पलट जाए या उसका अनुभाग कम हो जाए या बढ़ जाए, ऐसे कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। यानी पुण्य की भी जिसको रुचि है वो पुण्य की रुचि में महान मिथ्यात्व का महान पाप बंद कर रहा है, और वो पुण्य की जो उसको इच्छा है बांधने की वो भी पुण्य रूप रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु धर्म के बारे में ऐसा नहीं है। धर्म जो विपराकता है, जो शांति है, जो आनंद है, जिस समय मान लिया, जिस समय तत्व निर्णय किया, जिस समय सर्वज्ञता स्वरूप निश्चित किया, जिस समय क्रमबद्ध पर्याय को माना, उसी समय समय दर्शन हुआ, उसी समय अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उसी समय अनाकुलता हो गई, उसी समय शांति प्रकट हो गई। जिस समय का, यानी उसकी कहा तत्काल, एक समय का भी फर्क नहीं होगा। तो क्या कहते थे, इस निर्णय में इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते। इसके पश्चात जब वही आत्मा आत्मा के आश्रय से, यानी अपने आश्रय से विपराक परिणति की वृद्धि करता जाता है। देखो ये सारी बातें तो आत्मा के अपने आश्रय से प्राप्त हुई। अब समझो अभी विपराक की वृद्धि, विपराकता बढ़ानी है या बढ़नी है, राग द्वेष घटेंगे तो किस साधन से घटेंगे, उसके लिए क्या अलग कोई मेथड है क्या? तो विधि वही है, आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा को ही अनुभवते रहना। तो आत्मा के आश्रय से ही विचराग परिणति की वृद्धि होती है। तब एक समय वह भी आता है कि जब वह पूर्ण विचरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। उसने तो मात्र इतना ही किया कि अपने आत्मा को पहले पहचान लिया, जो अनादि से नहीं किया था काम, और फिर उस आत्मा को ही जानते रहा। उसका आश्रय करना यानी क्या करना? हम घर का आश्रय लेते, घर में जाकर बैठ जाते, वहाँ क्या करना? हम स्वयं आत्मा है, अब और अंदर किस आत्मा में जाए? तो आत्मा का आश्रय करना यानी आत्मा को ही जानते रहना। उसी को कहेंगे ध्यान, उसी को कहेंगे चारित्र, उसी को कहेंगे लीनता, उसी को कहेंगे अपने जीव तत्व का हमने आश्रय लिया, उसको हमने उपादेय बनाया। भाषा अलग अलग होगी। उसी को कहेंगे हमने आत्मा को ग्रहण किया और राग को छोड़ा। तो राग को पहले राग उत्पन्न हो गया तब उसको छोड़ेंगे, कैसा करेंगे? जब आत्मा को जानते रहते हैं तो राग को जो जान रहे थे मिथ्यात्व अवस्था में, तो राग को जानते समय उसमें स्वामित्व बुद्धि थी, सम्यक्त्व होने के बाद राग का स्वामीपना भी छूट गया। और जब शुद्धोपयोग में लीन होता है तब वो राग को जानना भी छूट जाता है। तो उसको कहते राग को छोड़ा, यानी वहाँ राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो हुआ थोड़ा बहुत वो अबुद्धि पूर्वक में है, परंतु अभी उपयोग है वो अपने शुद्धात्मा की तरफ है। तो उसके हम कहते हैं कि राग को छोड़ा और ज्ञान ने ज्ञान को ग्रहण किया। भाषा अलग अलग आएगी, किंतु ये सारा ग्रहण करने का अधिकार ये ज्ञान के द्वारा होता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, अब आगे। अतः मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु बंधुओं को कौन सा, हाँ पढ़ा था ना, तब एक समय वह भी आता है जब वो पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। वितरागता कौन से गुणस्थान में होगी, बारहवें में, अभी जो क्योंकि परमात्मा होने जा रहा है ना, इसलिए ग्यारहवें में होती है, परंतु वो फिर दोबारा नीचे आता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। बारहवें में पूर्ण वितराग हो जाता है और तेरहवें में सर्वज्ञ हो जाता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। अतः मोक्षाभिलाषी, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले मुमुक्षु बंधुओं को मरपत्तर के जैसे भी बने सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। ये कल बात आई थी ना, मरपत्तर भी कथम अपि मृत्वा, इसी भी शब्द बोले थे अमृत चंद्राचार्य ने। सर्वज्ञता का सही स्वरूप ख्याल में आते ही क्रमबद्ध पर्याय स्वयं समझ में आ जाएगी। हमने आज तक सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं किया है, जिसके ख्याल में सर्वज्ञ का स्वरूप आ जाता है तो उसी से अंदर क्रमबद्ध पर्याय उससे समझ में आ ही जाता है। उसके लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना होगा। ये हमने देखा था कि क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करने के लिए भी सबसे प्रबल हेतु जिसको कहते हैं वो सर्वज्ञता, सर्वज्ञता का आधार से क्रमबद्ध पर्याय को हमने समझा था। सर्वज्ञता सिद्ध करो तो भी क्रमबद्ध पर्याय ख्याल में आएगा, क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करो तो सर्वज्ञता ख्याल में आएगी आएगी। पर ध्यान रहे, सर्वज्ञता परोन्मुखी वृद्धि से समझ में आने वाली वस्तु नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब हम सर्वज्ञ कहते हैं तो हम कहाँ कहाँ देखते हैं, सर्वज्ञ भगवान क्या क्या जानते हैं, तो हम शुरू करते हैं जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म है अधर्म है, आकाश है, काल इतने असंख्यात है, और हम सबके अनंत गुण हैं। अनंत गुणों की एक एक समय में अनादि अनंत की पर्याय होती है और उस एक एक पर्याय में अपने अपने अनंत अनंत अविभाग प्रतिष्ठित होते हैं, जघन्य भी अनंत और उत्कृष्ट भी अनंत। इन सबको एक समय में युगपत भिन्न भिन्न जानते, सबको इकट्ठा नहीं, ये विश्व ऐसा नहीं, इकट्ठा तो है ही परंतु भिन्न भिन्न हर एक का अलग अलग स्वरूप भी वो निश्चित करते हैं, जानते हैं। तो हमारी दृष्टि कहाँ कहाँ भटकी, जीव अनंत उद्गल अनंत अनंत ये सारे की ओर गई, सर्व की ओर गई परंतु ज्ञान की ओर नहीं गई। इस सर्व को ज्ञान जानने वाला तो दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पर आनी थी, क्योंकि हमें तो अपने ज्ञान की पहचान है ना, अपने ज्ञान स्वभाव में से हमारा हर समय का ज्ञान आ रहा है, तो ये ज्ञान कहते ही ज्ञायक की ओर लक्ष्य जाना चाहिए। सर्वज्ञ कहते इनको सत्य को जानने वाला, वो जानने वाले की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, सबकी क्या क्या जाना इसकी ओर दृष्टि, यानी उसकी महत्ता आती है, क्या क्या जाना, परंतु इन सबको जानने वाला कौन है, एक समय की पर्याय। तो एक समय की पर्याय ज्ञान की इतनी महान, तो वो स्वभाव कैसा होगा कि जिसमें से अनंत काल तक ऐसी पर्याय निकलती रहेगी। और वो स्वभाव तो कभी नहीं प्रकट हुआ जब सर्वज्ञ हुए थे, स्वभाव तो अनादि से ही था। तो हम भी जीव है तो हम भी एक ज्ञायक स्वभाव ही है, अनादि से है, आज तक पता नहीं था, अब पता चला, तो पता चलते ही यहाँ सम्य दर्शन हो जाता है। तो क्या कहते है, ध्यान रहे सर्वज्ञता परोन्मुखी वृत्ति से समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। पर की ओर देखते देखते भगवान की मूर्ति की ओर या प्रत्यक्ष तीर्थंकरों को देखते देखते सर्वज्ञता समझ में नहीं आएगी, तो कैसे आएगी। सर्वज्ञता की पर्याय के सम्मुख हुई दृष्टि से भी सर्वज्ञता नहीं समझी जा सकती है। सर्वज्ञता की पर्याय है, अभी जो अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, उन्होंने सर्वज्ञता की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट की हुई है। अब उनके केवल ज्ञान की तरफ देखते देखते भी क्या कहते हैं, सर्वज्ञता समझ में नहीं आएगी। प्रत्यक्ष भगवान को देख रहे, अरिहंत भगवान विराजमान है, समो शरण में जीव जाता है, और सामने सर्वज्ञ है पर सुख देख रहा है, फिर भी उसको सर्वज्ञता का सही निर्णय नहीं है, तो समझ में कब आएगी सर्वज्ञता? तो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। ये तो मूल है सब इसका सिद्धांत का, कि अकेले पुस्तक पढ़कर क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक पढ़ने से या अरिहंत के बारे में जो जो स्वरूप शास्त्रों में लिखा है वो अकेला शास्त्र पढ़ने से सुनने से सर्वज्ञता स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। सर्वज्ञता क्या चीज है वो खबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें हम कहीं खाली कहेंगे जीव है वो ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है, परंतु हम यहाँ ज्ञान करने वाले है ऐसा जब तक एहसास नहीं है, वो ज्ञान क्या चीज है इसको जब पता नहीं है तो जीव में जाए आत्मा यानी मैं जीव द्रव्य हूँ मुझ में ज्ञान है वो बालपोती वाले कहते हैं ना, तो अकेले रटने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये जो ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान गुण का ही तो गुणांश हमने कहा ना, उसके विशिष्ट विभाग प्रतिच्छेद रूप से ये ज्ञान ही प्रकट है, और ज्ञान प्रकट है तो ये ज्ञान के साथ अनंत गुण है कि नहीं, वहाँ एक पर्याय से एक गुण के ऊपर से पूरा अभेद अखंड आत्मा पकड़ लेंगे। पकड़ने में क्या करना, ज्ञान में जानना उसका निर्णय करना, उसको कहते पकड़ना। तो अपने ओर जब दृष्टि जाएगी यानी अपना आश्रय जब लेगा तभी सर्वज्ञता समझ में आएगी, क्योंकि दूसरे की सर्वज्ञता का निर्णय करके हमको सर्वज्ञता नहीं समझ में आती। अपना सर्वज्ञ स्वभावी जो आत्मा है उसको जब जानेंगे तब सर्वज्ञता समझ में आ जाएगी। अभी सर्वज्ञता प्रकट नहीं है अपने, अभी अल्पज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञता का निर्णय इस अल्पज्ञ ज्ञान में ही हो जाता है। जब यह निर्णय हो जाता है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है और कुछ काल के बाद वो सर्वज्ञता पर्याय में भी प्रकट हो जाती है। तो कंडीशन यही है, अरिहंत बनना है ना तो सिर्फ अरिहंत को जाने, अरिहंत की तरफ देखते देखते नहीं अपने सर्वज्ञ स्वभाव की तरफ देखते देखते अरिहंत की और अपनी भी पहचान हो जाती है। सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। ये पुरुषार्थ सर्वज्ञता का और क्रमबद्ध का निर्णय अपने आत्मा की सम्मुख होकर करना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और इसी पुरुषार्थ से सर्वज्ञता प्रकट समझ में आएगी, इसी पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन होगा, इसी पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होगा। ये सारा ही मोक्ष मार्ग इसी पुरुषार्थ के आधार पर है, दूसरा अन्य कोई करना धरना है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। जी क्रमबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय है, सभी प्राणी क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर स्वभाव सन्मुख हो और अनंत शांति व असीम आनंद प्राप्त करे। कालांतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त कर परम सुखी हो, इस भावना के साथ विराम लेता हूँ। ये जो पुस्तक की चर्चा यहाँ खत्म की, उन्होंने क्या किया, कहा कि स्वभाव सन्मुख होकर अनंत शांति, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर अनंत शांति, कहा पहले जो अनंत अशांति थी अभी तो ये चौथी गुणस्थान की बात है, अनंत शांति और असीम आनंद कहा, अनंत सुख नहीं कहा। और फिर कालांतर में, कालांतर ने अभी तो सम्यक दर्शन प्रकट किया, कुछ काल के पश्चात यथा समय, यथा समय क्यों लिखा, कि जिस जिस जीव की जो जो अपनी क्रमबद्ध पर्याय जिस समय जैसी होगी, अकेले समय की बात नहीं, जब वो ऐसा पुरुषार्थ करेगा जब ये भवितव्य होगा, ये सारे 500 समवाय के साथ जो कार्य होगा तो सर्वज्ञता को प्राप्त करेगा, वो भी एक पर्याय है, वो भी एक कार्य है, केवल ज्ञान प्रकट होना ये कार्य है, उसमें भी ये 500 ही समवाय लगेंगे। वहाँ प्राप्त कर परम सुखी हो, इस भावना के साथ विराम लेता हूँ। यहाँ तक तो ये पुस्तक की चर्चा हो गई, ये प्रथम खंड पूरा हुआ। इसके बाद जो द्वितीय खंड है उसमें कुछ प्रश्नोत्तर है, उसके बीच में यहाँ जो दो भजन लिखे हैं उसको पढ़ेंगे हम। ये पहले भी हमने देखा था, भास्कर जी का था ना, कि जो जो देखी वीत रागने सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा है। यानी कुछ भी बिना देखा यानी जो सर्वनिर्णय के ज्ञान में नहीं आया है वो कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें निश्चिंत है ना कि जो होने वाला है वही होगा। हमें जो आकुलता थी करने धरने की वो तो मिट जाएगी। समयो एक बढ़े नहीं घटती, जो सुख दुख की पीड़ा रे, अभी जो सुख भोग रहा है उसका एक समय भी उसमें से कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। हमारी सारी कोशिश, हमारा जो सुख जिसको हम मान रहे हैं वो कायम टिकाने की कोशिश में, तो चिंता मत कर, जितना समय वो मिलने वाला है उतना मिलेगा ही, तेरे रखने से नहीं रहेगा और तेरे हाँ वो जल्दी भी छोड़ नहीं जाएगा, निकलेगा भी नहीं। वैसे दुख में भी लेना, दुख की बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत संयोगों के तरफ देख देख कर आकुलता हो रही है, तो ये जो जिसमें दुख मान रहा है वो भी एक समय भी घटेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं, जितना का उतना मिलेगा और जितने समय तक मिलना है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तू क्यों सोच करे मन मूर्ख, हो ये वज्र जो हीरा रे, यानी अपने मन को ही समझाते हैं कि तू मूर्ख की जैसे पागल की जैसे क्यों उसके ऊपर विचार करता है। जो सुख दुख जो संयोग जो है वो उनके अपने अपने निश्चित समय तक रहेंगे, तेरे रखने से नहीं रखेंगे और वो हटाने से दूसरे कोई आके हमारा सुख न ले जाए, ऐसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे वज्र जो है, हो ये वज्र जो हीरा रे, हीरा कैसा होता है, वज्र समान कठिन होता है, वैसे मन को समझाते हैं। मन को दे लगे न तीर का मान बान कहूं, मार सके नहीं मीरा रे, तू संहारी पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। लगे न तीर का मान बान कहूं, इसका क्या अर्थ है, तीर करना, हाँ तीर यानी वो हम तो कहते धनुष और उसकी वो हाँ प्रत्यंचा यानी वो दोरी आती हो, तीर कमान बाण कहू मार सके नहीं मीरा रे, इस लाइन का कुछ अर्थ ख्याल में नहीं आया। तू समारी पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे, ये तो लाइन हमने पहले पढ़ी थी कि अपना जो पौरुष है अपना ही बल है उसको संभालो तो अनंत सुख तो तेरा ही है। निश्चय ध्यान दरहुआ प्रभु को, जो तारे भव पीरा रे भव धीरा रे, भैया खेत धर्म निज अपनो, जो तारे भव नीरा रे। भैया ने भैया भगवती दास, उनका ये भैया शब्द है भगवती दास की। निश्चय ध्यान धरहु, निश्चय ध्यान करो यानी अपने आत्मा का जो निश्चय ध्यान अपने आत्मा में लीनता वो करो, वहाँ प्रभु को, जो निश्चय नहीं ध्यान हुआ तो प्रभु का ध्यान करो, जो तपंच परमेश्वर का, जो तारे भव धीरा रे, ये भव का जो भय है वो टल जाएगा तेरा। भैया चेत धर्म निज अपनो, अपने निज धर्म को चेत यानी जान, जो तारे भव नीरा रे, नीर यानी पानी, भव रूपी समुद्र जो है उसमें से वो तारेगा। ये दूसरा जो भजन है, हम कहो कछु भय नारे, हम कहो कछु भय नारे, जान लियो संसार, संसार यानी वस्तु व्यवस्था क्या है यह जानने पर हमारा भय मिट गया। हमें तो भय ही आकुलता ही होती थी, कैसा करे क्या करे, हमारा क्या होगा, पर का क्या होगा, कैसी किसकी पर्याय कैसी हो, मुझे इतना कार्य करना है, ये सारा भय अभी मिट गया। अपना स्वरूप जान लिया तो अपने को मनुष्य मात्र समझकर जो मरण का भी भय हो रहा था तो समझ में आ गया कि मैं तो अनादि अनंत सत वस्तु हूँ, तो ये सारा ही भय उसका मिट गया। ऐसा कौन कह सकता है, सम्यक दर्शन होते ही ये सप्त भयों का अभाव हो जाता है। अभी चारित्र अपेक्षा भय होगा, उसका उपाय भी करेगा, परंतु श्रद्धा अपेक्षा तो वो अपने को अजर अमर मानता है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार, मोख मझार यानी मोक्ष मझार, मोक्ष में जो निगोद में है वही मुझ में है और वही मोक्ष में है। निश्चय भेद कछु भी नाही भेद जिने संसार, इसमें निश्चय से कोई भी भेद है नहीं। निगोद वाला भी वो जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, मोक्ष वाला भी जो सिद्ध भगवान है वे भी जीव द्रव्य है, सब स्वभाव से तो समान है ही है। और सब में ये उत्पाद रेद हुआ भी सब में, अभी हम जो पंचाध्याय में पढ़ेंगे द्रव्य का स्वभाव, गुण का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव, ये सारे ही हम देखेंगे, तो हमें तो कुछ भेद ही नहीं करने आता है। तो निश्चय से तो कोई भेद है ही नहीं है, उनमें जो भेद जिन्हें उसमें जो भेद देखता है वही तो संसार है। क्योंकि जिसकी दृष्टि, जिस दृष्टि से भगवान अपने आप को देख रहे हैं, उस दृष्टि से हम भी अपने आप देखेंगे अपनी ओर, यानी गोद की ओर या भगवान की ओर, तो सारे एक जैसे दिख रहे, सारे स्वभाव रूप ही दिख रहे। हम हर एक की तरफ देखते हैं तो उनके पर्याय की तरफ देख देख कर ये अच्छा ये बुरा है ऐसे ये सोचते है, स्वभाव की तरफ देखो सबको, सबको चेतन रूप देखो तो उसमें कौन बुरा कौन अच्छा क्या है, तो सबको जानने देखने वाले तो है, जायक भाव है, सब जायक स्वभाव ही है। जब हम अपनी ओर देखना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो कौन सी दृष्टि से देखना पड़ेगा कि पर्याय को गौण करके जो स्वभाव को हम देखते रहेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। जब हमने अपने को स्वभाव रूप देखा, राग द्वेष को हटाया नहीं, अभी है वो, उसको गौण करके वो अपना स्वामी अपना हमने छोड़ दिया और अपने को देखा किस रूप, जायक भाव रूप। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जी जब अन्य जीवों को देखता है तो वो भी उनके राग द्वेष मोह मिथ्यात्व को गौण करके उसको उसके जायक भाव को ख्याल में लेता, तो उसके राग द्वेष के कारण अपने कषाय नहीं बढ़ाता, पर की ओर देख देख कर उसके राग द्वेष देख देख कर उससे अपने ऐसे भाव नहीं होते तीव्र कसाई, जैसे मिथ्यात्व एक दूसरे को देख देख कर उससे उसने ऐसा क्या मैंने ऐसा क्या उसने ऐसा क्या मैंने ऐसा क्या, उसके और अपने ही राग द्वेष को, उसके राग द्वेष को उसका स्वामी, उसको उसके राग द्वेष का स्वामी, अपने को अपने राग द्वेष का स्वामी, यानी अपने को राग रूप अनुभव करता है तब पर को भी राग रूप देखता है, तो पर का राग देख देख कर उसको भी गुस्सा आता है। जब अपने को राग द्वेष रहित उसने अनुभव कर लिया है तो पर को भी, अरे ये भी चेतन है, स्वामी जी कहते ना ये तो भूलेला भगवान से, और ऐसा भी कहते कि किसी को मैंने आज तक पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करो, यानी जब अपने को द्रव्य दृष्टि से देखने की आदत हो जाती है तो पर भी सभी वो चेतन में ही लगने लगते, वो साधर में लगते हैं। मच्छर भी देखा तो क्या लगता है, अरे ये भी चेतन है, उसमें मेरे समानता है ना, साधर में किसको कहते हैं, धर्म की समानता हो उसमें भी चैतन्य है, मुझमें भी चैतन्य है, अरे ये मेरा साधर में, तो अभी किसके प्रति राग होगा किसके प्रति द्वेष होगा, सभी साधर में चेतन जो ख्याल में आएंगे तो ये राग द्वेष उनके प्रति जो होते थे वो छूटने लगेंगे। परवश भय आपा विसारी गए राग दोष को उधार, जीवत मरत अनादि काल तय यो ही है उरझार। परवश होकर पराधीन होकर आपा विसारी के अपने आप को भूल के राग दोष को उधार, राग द्वेष को धारण किया था, आज तक क्या क्या किया उसकी चर्चा है, और जीवत मरत अनादि काल तय, और इसी तरह से अनादि काल से जीवन मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते आए हैं, यो ही है उरझार, और यही उरझार यानी उलझन है, यो ही है उरझार, हम को कछु भय मारे, यानी अभी हमको कोई भय नहीं है, जा करी जैसे जा ही समय में, ये आई क्रमबद्ध पर्याय की बात, जा करी यानी जिस विधि से जिस साधन से जैसे यानी जो पर्याय होने वाली, जा ही समय में ये काल लब्धि आ गई, जो हो तब जा द्वार, जो होने वाला है भवितव्य, जा द्वार, हाँ जिसके द्वारा जो बनी है वो बनेगी ही, तरी है कछु नाही वो टल नहीं सकती है, कर ली नो निर्धार, ऐसा निर्णय हमने कर लिया, वो तो जो होने वाला है वो होता ही है, परंतु आज तक हमें निर्धार नहीं था, अब हमने ऐसा पक्का निर्णय कर लिया। अग्नि जरावे पानी बोवे विश्रत मिलता पार, तो पुद्गल रूपी में बुध जन सबको जान नहार। ये पुद्गल का पुद्गल की बात करे, विश्रत मिलता पार है, पुद यानी गल, पुद और गल जुड़नार बिछड़ना, ये पुद्गल का स्वभाव है। तो अग्नि जरावे पानी बोवे, अग्नि जरावे ने अग्नि जलाता है, हाँ, यानी ये जो हमें जो पर्यायों में दिख रहा है ना, पुद्गल का मिटना जुड़ना और अनेक अनेक अलग अलग स्कंद बनना या अलग अलग उसकी पर्याय बनना, तो ये बिछुरत मिलता अपार, ये उनके बिछुड़ने से और मिलने से हो जाती है। बीज बो हाँ उत्पाद ये नहीं, ये सारा जो दिख रहा है वो मिलना और कुछ और दल इसको बताता है। बिछुरत मिलता पार है ना, हाँ, अग्नि जलाता है और पानी उगाता है, तो बिछुड़ना और मिलना है, और ये किसमें हो रहा है सारा, तो पुद्गल रूपी, ये सारा जो है वो रूपी पुद्गल है, जो जो नष्ट हो रहा है और जो जो नया उगता हुआ दिख रहा है वो सारा ही पुद्गल है, रूपी है, ये रूपी पदार्थों में ये होता है। और मैं कौन हूँ, मैं बुध जन, बुध जन कवि भी है और बुध जन यानी मैं ज्ञानी हूँ, ये सारा रूपी में हो रहा है। सबको जानना और सबको जानने वाला मैं हूँ, ये मिलना बिछुड़ना सारा पुद्गल में हो रहा है और मैं तो जानने वाला हूँ। अब यहाँ से द्वितीय खंड प्रारंभ करते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय कुछ प्रश्नोत्तर, ये तो पहले तो चर्चा कर ही आए है, इसमें एक प्रश्न और उत्तर के रूप में इसी को फिर दोहराते हैं। यो ही है उरेझार, उर में हमने नक्की किया, वो तो बता दिया। अब द्वितीय खंड को देखते हैं। आज के इस बहुचर्चित विषय क्रमबद्ध पर्याय की विस्तृत चर्चा से उपरांत यानी इतनी सारी चर्चा करने के पश्चात भी कुछ शंकाएं, आशंकाएं और मन प्रश्न उपस्थित किए जाते रहे हैं, यानी इस पर भी अनेक शंका और आशंका उपस्थित होती है। गत एक वर्ष से आत्मधर्म के संपादकीयों एवं प्रवचनों के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा निरंतर चलती रही है। इस क्रमबद्ध वर्ष सन 1979 में इसका प्रचार व प्रसार भी बहुत हुआ है, अतः अनेकानेक अभ्यासी आत्मार्थी बंधुओं की ओर से भी कुछ स्पष्टीकरण चाहने वाले प्रश्न निरंतर आते रहे हैं। यद्यपि क्रमबद्ध पर्याय के अनुशीलन में बहुत कुछ स्पष्टीकरण आ गया है, तथापि विषय के सर्वांगीण स्पष्टीकरण के लिए उन पर भी विचार कर लेना असंगत न होगा। इसी भावना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। विषय की पुनरावृत्ति न हो और सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर भी आ जावे, इस दृष्टि से समागत प्रश्नों को हूबहू न रखकर सभी संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नोत्तर माला को व्यवस्थित रूप देना उचित प्रतीत हुआ। तदनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। यानी हमें अनेक प्रश्न रिपीटेड होंगे और उसके उत्तर भी ऐसे एक दूसरे में, तो उसका रिपीटेशन नहीं हो, इस ढंग से उसको थोड़ा अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। प्रश्न, समय सार गाथा 308 से 311 की टीका में समागत जिन पंक्तियों को क्रमबद्ध पर्याय के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है उनका आशय तो मात्र इतना ही है कि जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। उसमें लाइन आती है ना कि अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव जीव ही है, अजीव नहीं है, अजीव ही अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है, ऐसी वो लाइन है। वो है ना जीवो ही तावत, इसमें दिया ना पहले हमने पढ़ा दिया जीवो ही तावत तो परिणाम। हाँ देखो पेज नंबर 18 पर जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही मिला क्या पढ़ो पेज नंबर 18 पर जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव एवं अजीव अपि क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव आत्म परिणाम ने अपने अपने परिणाम। अभी यहाँ पढ़ते हैं उसमें तो मात्र दो द्रव्यों की भिन्नता बताई है उसमें से पर्याय क्रमबद्ध ही होती है यह बात कहाँ निकलती है। ये तो प्रश्न हुआ कि उसमें तो पर्याय क्रमणीय यानी जीव जीव है अजीव अजीव है दो द्रव्यों की भिन्नता बताई है तो उसमें से आपने क्रमबद्ध पर्याय कैसे निकाली। तो उसका उत्तर देते हैं उक्त पंक्तियों में दो द्रव्यों की मात्र भिन्नता सिद्ध नहीं की है की गई है अभी तो स्पष्ट कहा गया है कि जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव ही अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है जीव नहीं। वो क्रम नियमित शब्द डाले ना यहाँ दो द्रव्यों की भिन्नता के साथ साथ द्रव्यों के परिणमन की व्यवस्था भी बताई गई है साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है क्योंकि जीव अपने जीव रूप परिणाम जो है उससे उत्पन्न होता है और अजीव भी उसके जो परिणाम है परिणमन है उसकी जो पर्याय है वो अजीव वाली। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता हर्ता स्वयं है और वह परिणमन भी अव्यवस्थित नहीं है नियमित है। नियमित ही नहीं अभी तो एक निश्चित क्रम में नियमित अर्थात बंधा हुआ है पूर्ण व्यवस्थित एवं निश्चित है यानी जीव जीव की पर्याय का कर्ता अजीव अजीव की अकेला अपने पर्याय का कर्ता इतना ही नहीं कहा तो अपने नियमित पर्याय तो नियमित यानी उसका क्रम भी नियमित और जो जो एक एक समय वाली पर्याय वो भी निश्चित। और अधिक स्पष्ट करे तो इसमें जीव को अकर्ता सिद्ध किया गया है जैसा कि गाथा की उत्थानी का एवं टीका की अंतिम पंक्ति से स्पष्ट है जो कि इस प्रकार है अथ यानी वो जो गाथा है ना उसके पहले हेडिंग उसका उत्थानी का यानी उसका हेडिंग क्या दिया है उस गाथा का तो कहते अथ आत्मनः अकर्तृत्वम दृष्टांत पुरस्सरम आख्याति यानी अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक सिद्ध करते हैं बताते हैं समझाते हैं और उसके बाद जो अंतिम जो टीका में गाथा के बाद जो टीका लिखी है उसके बाद जो हम कहते ना तात्पर्य है तो यहाँ लिखते हैं अतः जीव अकर्ता अवतिष्ठते इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। गाथा के पहले क्या कहा कि अब आत्मा का अकर्तृत्व सिद्ध करते हैं ये दृष्टांत पूर्वक बताते और बाद में अंतिम में क्या लिखा इस तरह से आत्मा का अकर्तृत्व सिद्ध होता है। जीव से अजीव की भिन्नता तो जीव अजीव अधिकार में ही स्पष्ट कर आए थे सर्वविशुद्ध अधिकार में उसकी चर्चा की क्या आवश्यकता थी। यहाँ तो जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से स्वयं परिणमता हुआ बदलता हुआ भी इतना नहीं बदल जाता कि वह अजीव हो जाए यह बात कही जा रही है यानी जीव बदलते 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 कहीं ज्ञान उसका मिट जाए वो अजीव हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा तीन काल में। उसके बदलने की भी एक सीमा है वह अपने में ही बदल सकता है यानी जीव कितना बदलेगा तो उसका जीवपना नष्ट नहीं होगा वो जीव जीव रूप होकर जितना बदलना है उतना बदलेगा यानी वो अपनी सीमा में बदलेगा उसका जो अपना जीवपना है वो नष्ट होकर वो पुद्गल रूप नहीं हो जाएगा तो उसको कहते हैं कि वो अपने में ही बदलता है, बदल कर भी अपने रूप ही रहता है, पर रूप नहीं होता, पर पदार्थ भी उस रूप नहीं होता। जो ज्ञान गुण अभी कुमति ज्ञान रूप है, वह बदल कर अगले क्षण सुमति ज्ञान हो सकता है। समय दर्शन होते ही एक समय करण लब्धि के अंत समय में वो कुमति ज्ञान था, और समय दर्शन होते ही पहले समय में वो सुमति ज्ञान हुआ। सुमति ज्ञान से पलट कर ज्ञान अगले क्षण केवल ज्ञान रूप हो सकता है। इस समय ने वो समझाने के लिए जो यानी वो उसी समय नहीं, वो समय दर्शन का समय नहीं लेना। अब जो बारहवें गुण स्थान के अंतिम समय में वो पहले वहाँ कौन कौन सी ज्ञान के पर्याय है, मति शुद्ध ज्ञान है ना, तो वो सुमति ज्ञान था। और जब तेरहवें गुण स्थान का पहला समय हुआ तो ये क्या हुआ, अभी वो केवल ज्ञान हुआ। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह रसरूप हो जाए, ज्ञान गुण पलट कर रसरूप हो जाए, गंध रंग रूप हो जाए या सुख रूप हो जाए। पहले तो पुद्गल के लिए दोष, और बाद में जीव का ही अन्य गुण लिया, यानी ज्ञान रूप मिटकर सुख रूप नहीं होगा। पर्याय के बदलाव की भी एक मर्यादा है, और वह भी नियमित है। वह हमारी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि अपने निश्चित क्रमानुसार बदलती है, यह बात यहाँ स्पष्ट की गई है। एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी परिणमन नहीं करता, करे तो वह उस रूप हो जाए, अर्थात जब वह उस रूप होवे तब वह उसे परिणमा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि जीव को पुद्गल को परिणमाना है तो वो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा, अन्यथा वो पुद्गल का परिणमन नहीं कर सकता। क्योंकि बात पहले निश्चित हो चुकी है कि द्रव्य अपने ही पर्याय का करता है। यदि हमको पुद्गल का कुछ कार्य करना है तो पहले हमें पुद्गल होना पड़ेगा, जो कि असंभव है। अजीव को परिणमाने बदलने के लिए जीव को अजीव रूप होना होगा। जब वह स्वयं अजीव रूप हो तब वह अजीव के परिणमन का कर्ता हो सकता है, और ऐसा कभी होता नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव अपने क्रमनियमित परिणामों में परिणमनता यानी बदलता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता। कैसी भी पर्याय क्यों न हो, निगोद में भी जाओ देखो वहाँ, तो वहाँ भी ज्ञान की जो पर्याय चल रही कभी वो ज्ञान रहित नहीं हो जाएगा, वो कभी अजीव नहीं हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यद्यपि अभी तो ये हमने प्रूव किया कि वो दूसरे का के पुद्गल अन्य द्रव्य का तो करता है ही, दूसरी बात यह है कि यद्यपि जीव अपने परिणामों का करता है तथापि उसे करने का कुछ बोझा उसके माथे पर नहीं है। अपना भी परिणाम हम करे तो होगा, ऐसा बोझा उसके माथे पर नहीं, क्योंकि वह परिणमन भी सहज होता है और अपने नियमित क्रम में होता है। परिणमन निरंतर होता है, हमने देखा था द्रव्य तो गुण है तो निरंतर होता है, परिणमन होता ही क्यों है, क्योंकि वस्तु तो गुण है, परंतु वो होगा वही। ऐसी भी योग्यता रूप जो धर्म है वो द्रव्य में विद्यमान ही है कि अपनी कौन से पर्याय करे, क्योंकि अनादि अनंत सारा ही प्रवाह तो निश्चित है, और वो प्रत्येक द्रव्य में जैसे सीलित किया है, जैसे खचित किया है, जैसे पत्थर में टांसी से घाव करते हैं, ऐसे जाने हमारे पूरा द्रव्य ही ऐसा है कि उसकी एक 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 पर्याय सुनिश्चित है, यानी उसका करने धरने का कोई बोझा हमारे माथे नहीं है, क्योंकि वह परिणमन भी सच होता है और अपने नियमित क्रम में होता है। यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है। पुद्गलादि अजीव द्रव्य अपने परिणमन का कोई बोझा नहीं रखते तो क्या उनका परिणमन रुक जाता है? हमें लगता है हम चेतन है, जानने वाले हैं, इसलिए जान जान कर हम अपना परिणमन करते, तो पुद्गल तो अजीव है, वो कुछ नहीं जानता है। धर्म अधर्म आकाश काल भी अजीव है, वो कुछ नहीं जानते हैं, तो क्या उनका परिणमन रुक जाता है? क्या जीव करे तो उनका परिणमन होता है? जीव तो जानता तक नहीं कि धर्म अधर्म नाम का कोई द्रव्य है, तो उसका परिणमन कैसा होता होगा? पुद्गल को कुछ पुद्गलों को जानते हैं, हमने जब ये पेंसिल उठाई तो ये उड़ गई, ऐसा हमारा मानना है ना। हमने रोटी बनाई तो बन गई, कुमार ने घड़ा बनाया तो बन गया, तो ये परकर्तृत्व का ही अभिमान है जीव को, तो उसकी उसमें भी कुछ परिणमन जो हो रहा है और उसके अपने में से हो रहा है, इसका हमें पता नहीं। तो सारे अजीत द्रव्य भी उसमें ज्ञान नहीं होते हुए भी कुछ समझ में नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका परिणमन अपने अपने में हो रहा है। यदि नहीं, यानी यदि उनका परिणमन रुक नहीं जाता है, तो फिर जीव ही अपने माथे पर बोझा क्यों रखे। तो इसको तो बुद्धि मिली थी अपना ज्ञान करने का और ये सारा निर्णय करने का, तो उल्टे बुद्धि का उपयोग किया गया, ये सारे का कर्तृत्व का भार अपने आप पर लाद दिया ही जीव ने, किसी ने दिया नहीं उसको ये बोझा ले ले करके। परिणमन को निश्चित बताकर द्रव्य गुण का कुछ अधिकार कम नहीं किया गया है, अपितु बोझा हटाया है, क्योंकि वह अपने परिणाम का अधिकृत कर्ता और भोक्ता तो है ही। परिणाम ये करने 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 की बुद्धि है, वो बुद्धि में भ्रांति में उसने ये बोझा खड़ा कर दिया। वैसे तो द्रव्य और गुण तो अपने अपने परिणामों के कर्ता तो है ही, भले ये माने या नहीं माने। इसने दूसरे के कर्तृत्व का बोझा मान लिया, परंतु वो दूसरे का कर्तृत्व इसको है ही नहीं, और अपने कर्तृत्व का बोझा वो भी अपना तो अपना अपना परिणमन हो ही रहा है, उसमें भी इसके सोचने से या इसकी इच्छा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। वस्तुतः बात तो यह है कि जिस प्रकार द्रव्य सत है, गुण सत है, उसी प्रकार पर्याय भी सत है। हम सबका विश्वास है कि उनमें कुछ फेरफार संभव नहीं है। हम जानते हैं कि हम जीव द्रव्य, अभी इसमें क्या फेरफार करें, हम पुद्गल तो हो नहीं सकते, और हमारे में जो अनंत गुण है वो तो है ही है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्य तो सारे ही है, तो उसमें तो कोई फेरफार करने की बुद्धि तो हमें है ही नहीं है, अतः उनके बदलने का हमें विकल्प भी नहीं उठता। पर परिणमनशील होने से पर्याय के संबंध में जगत की कुछ ऐसी धारणा है कि उसमें फेरफार किया जा सकता है, अतः उसमें फेरफार करने की बुद्धि होती है। यानी जो परिणमनता हुआ, जो बदलता हुआ दिखता है, तो उसमें फिर इच्छा के अनुकूल बदलने की उसमें चेष्टा रहती है, उसका ऐसा अज्ञान भाव रहता है। द्रव्य गुण के साथ पर्याय भी स्व समय की सत है, अपने समय की सत है, वो स्व समय वाली सत, उसमें भी अपनी इच्छा अनुसार कोई फेरफार नहीं किया जा सकता है। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा तो उसमें फेरफार करने की बुद्धि भी नहीं रहेगी। देखो इतना होते कितनी निराकुलता हो जाए, ना दूसरे की कोई चिंता है, ना अपना भी पर्याय विशिष्ट आए, तो उसके सोच सोच में विकल्पों में ही हम आकुलित होते। पर्याय भी इस प्रकार की सत है, अचला है, जो चलित नहीं होती उसको अचला कहा, ये बात आई थी ना, पर्वत को अचल कहते और पार्वती को अचला कहते, पर्याय को भी उन्होंने अचला कहा था। आगे आई देखो बात, पार्वती है, पर्वत अचल तो पार्वती अचला, इसलिए उसको पार्वती कहा। सती है, सती यानी वो सत, वो सती, वो सती यानी वो मरती है अपना पति, हाँ पति का देहांत होने के बाद मरती, वो सती नहीं, ये सत से सती शब्द लिया। तो ये बात पहले समझा चुके हैं, पार्वती सती हो गए आदि विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है, अतः यहाँ विस्तार देना उपयुक्त नहीं है। फिर भी जो लोग पर्याय को अपनी इच्छा अनुसार बदलना चाहते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में वे भूतकाल की पर्याय बदलना चाहते हैं या वर्तमान की या भविष्य की। चलो आपको ऑप्शन देते हैं, कौन सी बदलनी है, ऐसा पूछते हैं, अभी उसका उत्तर समझाएंगे। भूतकाल की पर्याय तो बदली नहीं जा सकती, क्योंकि वे तो स्वयं बदल चुकी है, समाप्त हो चुकी है। हम बचपन में ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ये सारी यादें तो आती है, अब चलो उसको बदल डालेंगे, अरे बदलेगा क्या, वो तो बीत चुका है, तो हम उसको बदलने की कोई चेष्टा नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते, अतः उनमें तो फेर बदल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब रही वर्तमान और भविष्य की पर्याय, वर्तमान पर्याय भी हो ही रही है, उसमें भी क्या किया जा सकता है। हमें क्रोध आ गया, जो वर्तमान में चल रहा है अभी उसको क्या कहेंगे, क्या करेंगे उसको, वो तो समय वाला है ना, समय वाला है, आने के पश्चात असंख्यात समय के बाद हमारे ख्याल में आया। सूक्ष्म ज्ञान है तो वो उसी समय नहीं जानता, उसमें बहुत समय बीच में बीत जाते। हम रसोई करते करते तेल का छीटा उड़ जाता है, देखते तो रहते, देखने में तो पहले आता है, फिर यहाँ उड़ गया, क्योंकि कोई सेंसेशन एक 5 सेकंड तक कुछ नहीं होता और बाद में जलने लगता है। देख तो रहे कि ये तेल का छीटा उड़ गया, और उसके स्पर्श के द्वारा जानने के लिए और टाइम लगता है। ये तो इंद्रियों की इतनी इंद्रिय ज्ञान, अभी ये जो इंद्रिय ज्ञान से तो ये नहीं जानेंगे, परंतु ये सूक्ष्म ज्ञान में इतनी पराधीनता, इतने उसकी मंदता होती है इस ज्ञान की। यदि पर इस पर यदि कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त कोई अज्ञानी कहे कि वर्तमान पर्याय में कुछ क्यों नहीं किया जा सकता है, लो मैं उसे अभी उखाड़ फेंकता हूँ। उससे कहते हैं, भाई जरा विचार तो करो, वह उत्पन्न तो हो ही गई है, जो पर्याय ऑलरेडी उत्पन्न हो गई है, अतः उसे उत्पन्न होने से रोकना तो संभव नहीं है। अब रही बात उखाड़ फेंकने की, तो भाई उसका काल ही एक समय है, एक समय बाद वह स्वयं उखड़ जाने वाली है, उसमें तुम्हारा क्या काम, तो तुमने क्या किया, वो तो स्वयं नष्ट हो गई। दूसरी बात यह भी तो है कि हमारे सूक्ष्म ज्ञान में वह पर्याय उत्पन्न होने के असंख्य समय बाद आती है। देखो ये बात आ गई, असंख्य समय बीच में चले जाते हैं तब वो पर्याय अपने ख्याल में आती है। जब तक हम उसे उखाड़ने की सोचेंगे तब तक तो वह कभी की उखड़ चुकी होगी, ये समय की तो बात जाने दो, असंख्यात समय में बीत चुके होंगे। इस पर यदि वह कहे कि न सही, भूतकाल की और वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय तो हम बदल ही सकते हैं, यानी यहाँ तो अभी वर्तमान में और भूत में कुछ कर नहीं सकता, चलो अभी भविष्य की बदलेंगे। उनसे कहते हैं कि भविष्य की पर्याय अभी है ही कहाँ जो आप उन्हें बदलेंगे। इस पर यदि यह कहा जाए कि भविष्य में बुरी पर्याय नहीं आने देंगे, अच्छी अच्छी पर्याय ला देंगे, तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि कौन पर्याय अच्छी है, कौन बुरी, इसका निर्णय कौन करेगा। विभिन्न रुचे यहाँ ही लोग कहा, यानी लोग कहा, लोग यानी लोग जो है वो विभिन्न, यानी भिन्न भिन्न रुचि वाले होते हैं, यानी लोग जो है वो अलग अलग रुचि वाले होते हैं, जो पर्याय आपको अच्छी लगे वो दूसरे को नहीं अच्छी लगे। हाँ, नाना जीवा नाना कम्मा। इस नीति के अनुसार अच्छे बुरे का निर्णय भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि कोई कहे कि हम अपनी रुचि के अनुसार निर्णय करेंगे, उनसे कहते हैं कि यदि आप सिर्फ अपनी ही भावी पर्याय के कर्ता बनते हो तो बात अलग थी। पाना नहीं, नए में कौन से पेज है, नए एडिशन में आपका है ना, हाँ 73 है। कोई कहता है ना अपनी रुचि के अनुसार करेंगे, हम उनसे कहते हैं कि यदि आप सिर्फ अपनी ही भावी पर्याय के कर्ता बनते हो तो बात अलग थी, पर आप तो पदार्थों की भी पर्याय अपनी अनुकूल बदलना चाहते हैं, उनमें इष्ट अनिष्ट का निर्णय मात्र आपकी ही इच्छा से कैसे होगा। जगत में अन्य प्राणी भी तो है, उनकी इच्छा से व्याघात का प्रसंग अवश्य आवेगा, व्याघात यानी उसमें रुकावट। देखो कोई अच्छी चीज है तो आपकी क्या इच्छा हुई कि उसको प्राप्त करने की, तो यहाँ इतने सारे लोग भी बैठे हैं, किसी को अनुकूल लगे किसी को प्रतिकूल लगे, अनुकूल लगने वाला हर एक उसको चाहेगा, जिसको प्रतिकूल लगेगा वो उसको नष्ट करना चाहता है और आप उसको रखना चाहती है। ऊपर पंखा लगाया, किसी को इष्ट लगे तो वो उसको अच्छा है चलने दो कहेगा, जिसको अनिष्ट लगे वो क्या कहेगा, उसका बंद करेगा, तो ये पंखे पर किसकी सत्ता चलेगी, तो क्या कहते यहाँ। तो जगत में अन्य प्राणी भी तो है, उनकी इच्छा के व्याघात का प्रसंग अवश्य आवेगा, वो उनकी इच्छा रुक गई, उसमें रुकावट गई, वो टूट गई, आपकी इच्छा अनुसार कार्य होगा तो दूसरे की इच्छा वहाँ मरोड़ गई ना, वो उसकी इच्छा को आपने दबा दिया कि नहीं? दूसरे क्या आपको पता है कि भविष्य में अमुक पर्याय आने वाली है जिससे आप यह निर्णय कर सके कि अमुक पर्याय को बदल कर मैं अमुक पर्याय लाऊंगा। यानी आप यदि सर्वज्ञ होते तो जान लेते कि यह आगामी पर्याय है तो आप बदल सकते। आपको पता ही नहीं है कौन सी पर्याय आने वाली है तो बदलेगा किसको? यदि नहीं तो फिर यह अहंकार झूठा ही सिद्ध हुआ कि मैंने ऐसा नहीं होने दिया और ऐसा किया, क्योंकि जो कार्य संपन्न हुआ है वह नहीं होने वाला था, अन्य होने वाला था, इसका निर्णय कैसे होगा? जैसे विशिष्ट कार्य हुआ, हमें देखो मैंने ऐसा बताया था ना, मेरे कहने से ये सारे लोग मान गए, इन्होंने ऐसा किया, मगर वो मानने वाले थे, वो अपने आप से ही करने वाले थे, तुमने क्या किया उसमें? हो सकता है वही होने वाला हो जिसे आप कहते हैं कि मैंने ऐसा किया है। यहाँ जी इसके जीव का अभिमान है ना कि मैंने सबको बिताया, देखो सबने मेरा सुना, अरे मगर वो ऐसे ही करने वाले थे अपने आप से। तो इस जीव को क्या लगता है, मैंने बताया इसलिए सबने सुना और सबने ऐसा किया। बहुत दूर जाकर भी भविष्य की पर्याय में फेरफार करने की बात सिद्ध कर पाना संभव नहीं है, अतः व्यर्थ प्रयास से क्या लाभ? अंततो गत्वा एट द एंड यह स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है कि प्रत्येक द्रव्य क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ निज रूप ही रहता है, पर रूप नहीं होता। ये तो सारा एक पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। अब दूसरा प्रश्न, यदि कोई किसी को नहीं परिणमाता तो फिर यह परिणमन होता कैसे है, इसे कौन कर जाता है? यदि कभी यह परिणमन रुक जाए तो, अथवा कभी धीरे धीरे हो और कभी तेजी से, इसका नियामक कौन होगा? उत्तर, प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, ध्रुवता के समान परिणमन भी उसका स्वभाव है। कल बात आएगी ना, जैसे ध्रुवता है वैसे उत्पाद वे भी द्रव्य का स्वभाव है, जैसे गुण है वैसे पर्याय भी उसका स्वभाव है। गुण पर्यायबद्ध द्रव्य हमने देखा था, कल बहुत चर्चा हुई थी पंचाध्याय में। उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव पर निरपेक्ष ही होता है। स्वभाव हम उसी को कहते हैं जो पर की अपेक्षा नहीं रखता, उसी को स्वभाव कहते हैं। यह परिणमन कभी रुक जाए इसका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परिणमन भी इसका नित्य स्वभाव है। परिणमन इटसेल्फ कहते हैं जो बदलाव उसको, परंतु जो परिणमनशीलता है, परिणमन 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 होते रहना, ये जो स्वभाव है वो नित्य है कि अनित्य है? क्योंकि नित्य ही परिणमने का जीव द्रव्य का स्वभाव, नित्य ही परिणमन करते रहे, नित्य ही परिणमन करते, नित्य ही परिणमन करते, ऐसा स्वभाव है। तो स्वभाव उसी को कहते हैं जो नित्य होता है। यानी अनित्यपना ये स्वभाव है वो नित्य है। जैसे नित्यता, ये नित्यता जी द्रव्य का स्वभाव है, वैसे अनित्यता भी द्रव्य का स्वभाव है, और जो अनित्यता है वो नित्य है। देखो ये परिणमनशीलता है ना, क्या अनित्यता, ये परिणमनशीलता द्रव्य में हमेशा रहेगी क्या? कभी नहीं होगी, ऐसा भी होगा कि परिणमन रुक गया? हमेशा रहेगी। जो हमेशा रहता उसको क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। यानी अनित्यता कहो या परिणमनशीलता कहो, वो नित्य है कि अनित्य है? वो नित्य है। परिणमन एक एक समय का है, परंतु एक एक समय में परिणमन करे ऐसा जो धर्म द्रव्य में है, ऐसा धर्म है ना, हर एक द्रव्य में ऐसा गुण है, वो गुण है तो गुण तो नित्य रहता है। इसलिए जो अनित्यता वाला जो गुण है वो नित्य है। तो परिणमन भी इसका नित्य स्वभाव है, अर्थात नित्य परिणमनशीलता प्रत्येक द्रव्य का सहज स्वभाव है। वो निरंतर परिणमन करे, ऐसा कौन सा गुण है द्रव्य में? द्रव्य तो वो नित्य है कि अनित्य है? तो उसी को समझाते हैं। जल्दी और देरी होने की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय एक समय की ही होती है। यानी किसी का परिणमन जल्दी जल्दी होए और किसी का स्लो स्लो हो, ऐसे भी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक एक पर्याय होती ही एक एक समय की। किसी पर्याय का दो समय रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता, और एक समय के पहले समाप्त होने का भी प्रश्न संभव नहीं है। अब रही बात यह कि यह सब कौन करता है, उसके संबंध में बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियाँ पड़ी है, निरंतर उल्लसित हो रही है, उनके द्वारा ही यह सब सहज होता रहता है। इतनी अनंत शक्तियाँ हैं, ये गुण वो अपना अपना सहज कार्य करते रहते हैं, वो सहज होता रहता है। प्रश्न, वे अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी है जिनके द्वारा यह सब होता है? क्या अनंत भी गिनाई जा सकती है? कुछ तो बताइए ना। भाव शक्ति, अब ये छह शक्तियों की बात आएगी, 47 शक्ति में से ये जो छह शक्ति है ना, भाव अभाव अभाव भाव वगैरह, तो भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति आदि, ये इसमें वो सारा समय, ये जो सारी शक्तियाँ हैं उनमें ये जो निरंतर होने का, जो कार्य होने का जो है, पर्याय रूप कार्य होने का ऐसा स्वभाव द्रव्य में पड़ा है, ये आगे बताएंगे। पर्यायों के उत्पाद और नाश में इन शक्तियों का क्या योगदान है, कृपया संक्षेप में समझाइए। उत्तर, वैसे आपका हुआ है ना ये शक्तियों का प्रकरण 47 शक्ति, समय सार के क्लास में याद है 47 शक्ति तेजुबे, थोड़ा थोड़ा क्यों भूल गए? हाँ मैं गिनाऊंगी, बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं देवेंद्र भाई बोल रहे ना। हाँ परिणाम कर रहे अगुरु लघु पहले, बराबर है परिणाम शक्ति। ये आई बात। हाँ पहले कर्म फिर कर्तृ, कर्तृ शक्ति करण शक्ति संप्रदान, वेरी गुड, ऐसा आना चाहिए संबंधित, बराबर ऐसे 47 शक्ति, तो उसमें से ये छह शक्तियों को यहाँ समझाते हैं। हाँ 47 वो किया तो हुआ कि नहीं? देखो हमें कोई चीज याद आ जाती है, रखते हम तो याद रखते तो अच्छा लगता है ना अपने। आज कैसे कहे मैं कहूँगा, रोज तो आपको पीछे लगेंगे तो भी नहीं कहते हैं। ऐसे 47 मैं भी याद कर लेना, डिस्टर्बेंस की मत सोचो, करूँगा कहना। वो क्या हम आते जाते भी रास्ते में घूमते हैं ना, या कहीं जाने ट्रैवलिंग में कहीं भी बैठे बैठे, वो तो इतना सस्ता टाइम मिलता है, एक आधी चित्र रख देना किसी में। हाँ देखो प्रश्न, पर्यायों के उत्पाद और नाश में इन शक्तियों का क्या योगदान है, कृपया संक्षेप में समझाइए। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, यानी हमेशा कभी भी ऐसी होता बात नहीं होती कि द्रव्य तो है परंतु उसकी कोई वर्तमान अवस्था न हो, तो द्रव्य हमेशा अपने अपने वर्तमान अवस्था रूप से विद्यमान रहता है, वर्तता है, वर्तना कहते ना, वर्तना हेतुत्व कहते, काल द्रव्य का गुण कहा है वर्तना हेतुत्व या परिणमन हेतुत्व कहते, उसी को वर्तना हेतुत्व। वर्तना यानी अपने अपने वर्तमान जो जो पर्याय है अवस्था है उस रूप से रहना, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती ही है जिसे भाव शक्ति कहते हैं। नीचे दिया है संस्कृत, भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति। अब आगे, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती, इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। यानी द्रव्य हमेशा निश्चित अपने वर्तमान पर्याय रूप से ही रहेगा, उस समय वो अन्य अवस्था रूप नहीं होगा। वर्तमान समझो उसके एक 10 नंबर की उसकी पर्याय चल रही है, तो वर्तमान में कोई 100 नंबर की भी नहीं होगी, 50 की भी नहीं होगी, पहले नंबर की भी होगी, तीसरे नंबर की भी होगी, वो जो है निश्चित उसी पर्याय रूप से होगी, अन्य पर्याय वहाँ नहीं होगी, अन्य पर्याय रूप वो नहीं होगा द्रव्य, उसको कहते हैं अभाव शक्ति। उन दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं। प्रश्न, पर्याय को स्व समय में कौन लाता है और एक समय बाद कौन हटाता है? पर्याय स्व समय में आ ही जावे और अगले समय हट जाए, इसका नियामक कौन है? यदि पर्याय स्व समय पर न आए तो उसे कौन लावे और एक समय बाद भी न हटे तो कौन हटाए? ऐसी स्थिति में या तो द्रव्य पर्याय से खाली हो जाएगा या एक समय में दो दो पर्याय हो जाएंगे, पहले वाले हटे ही नहीं और दूसरे आ जाए तो एक समय में दो पर्याय होगी, तो उसको कहते हैं इसकी आप चिंता न करें, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा, यानी अभी जो वर्तमान में है अगले ही समय में वो नष्ट हो जाएगी। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। अभी जो भाव रूप है ना पर्याय, वो अभाव रूप हो जाएगी, उसको कहते हैं भाव अभाव शक्ति। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी, इस शक्ति का नाम अभाव भाव शक्ति है, जो अभी वर्तमान में अभाव रूप है परंतु अगले ही समय में वो निश्चित समय से निश्चित रूप से भाव रूप हो जाएगी, उसको कहते हैं अभाव भाव शक्ति। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव अभाव शक्ति। भाव भाव शक्ति चाहिए, वह हमारे में भावा भाव लिखा है, आपने क्या लिखा है? भाव भाव है कि भावा भाव है? भाव भाव चाहिए, भाव भाव चाहिए। ऊपर भावा भाव तो हो गई ना, यहाँ भाव भाव चाहिए, भाव भाव भावा भाव लिखा है, वो भाव भाव चाहिए, वर्ष बराबर है। वहाँ तो वही बताना है भाव अभाव, यानी वर्तमान में जो है वो अगले समय में अभाव हो जाएगी, यानी भाव में से अभाव हो जाएगी वो बराबर है वहाँ, और अभाव में से भाव हो जाएगी वो भी बराबर है। अब यहाँ तो पांचवी और छठी शक्ति की बात चल रही है, तो पांचवी कौन सी है? भाव भाव, दो बार भाव लिखना। तो भाई समझ में आया कौन सी लाइन की कर रहे है? नीचे से तीसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन। हाँ, तो भाव भाव शक्ति नहीं, कन्फर्मेशन है कि नहीं? जो है वही होगी, तो भाव भाव, इसलिए भाव भाव दिया। हाँ, जो भाव होना है वही होगा, दूसरा नहीं होगा, इसलिए भाव भाव का। जिसके ऊपर हेडिंग में तीन आंकड़ा दिखा है ना, वो भाव भाव। देखो नीचे भगवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति, नीचे बराबर लिखा है, ऊपर गलत लिखा है। और एक नंबर में कैसे लिखा है? भवत पर्याय व्यय रूपा, जो भवत पर्याय जो अभी वर्तमान में है वो पर्याय वो व्यय होने वाली है, उसको भाव अभाव शक्ति का। दूसरे नंबर में अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति, यानी जो अभी नहीं है वो होगी, उसको अभवत जो अभी नहीं है यानी वर्तमान की बात है, अभवत यानी होने वाली नहीं हा? वही यानी आत्मख्याति टीका, उसके कहाँ से वो लिया है इसलिए वो वही डिक्टो डिक्टो कहते ना है। एकसठ नहीं, वो इक्यानबे है, ये ख्याल में आया ना। तीन आंकड़ा जिसमें भाव भाव शक्ति करना, तथा एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो अभाव है वो अभाव रूप ही रहेगी, कभी भाव रूप नहीं होगी, ऐसी भी एक शक्ति। तो उसके कहते अभाव अभाव शक्ति, यानी अभावा भाव वाक है ना, वा में वो प्लस अ दोनों आ गए, ये चार नंबर की यहाँ लिखा है। उक्त छह शक्तियों का स्वरूप यह सुनिश्चित सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसे ही होती है, उसमें पर की अंशमात्र भी अपेक्षा नहीं रहती। आई ना, ये तो ये छह शक्तियों के द्वारा ये क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होता है। छह शक्ति पहले तो हमने देखा था, सर्वज्ञता को एक हेतु दिया था, अब यहाँ ये छह शक्तियों को, ये तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की भी बात की, समय सार की भी, वो क्रम नियमित आत्म परिणाम उसकी भी चर्चा की, अब यहाँ ये नया हेतु दे रहे छह शक्तियों के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ दिगम्बराचार्य कुंकुंद के प्रसिद्ध परमागम समय सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका के अंत में परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों पर श्री कांजी स्वामी के विस्तृत प्रवचन आत्म प्रसिद्धि नाम से हिंदी में, ये पहले जो होते ना वो आत्म प्रसिद्धि नाम से थे, उसके पश्चात जब दोबारा समय सार पर कुछ व्याख्यान हुए उनमें से जो 47 शक्ति पर थे उसका नाम था आत्म वैभव, और फिर और अभी उसके पश्चात लास्ट टाइम 19वें बार जब व्याख्यान किया था वो उसके सारे प्रवचन रचना कर 11वां भाग जो है गुजराती में, उसमें ये सारे 47 शक्तियों पर ही केवल वर्णन है उसका, उसी की चर्चा उसी के प्रवचन है। विशेष जिज्ञासा रखने वाले आत्मार्थी बंधुओं को अपनी जिज्ञासा वहाँ से शांत करना चाहिए, यहाँ पर उनकी विस्तृत चर्चा के लिए न तो अवकाश ही है और न वह न्याय संगति है, क्योंकि अपना विषय अलग चल रहा है और उसमें बीच में उसकी डिटेल चर्चा करना संभव नहीं है। इसके लिए यानी ये अपना क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करने के लिए जितना आवश्यक है उतनी चर्चा यहाँ कर दी। प्रश्न, जब हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते तो फिर हमारे परिणामन के कर्ता भी हम क्या रहे, यानी हम अपने परिणाम के कर्ता नहीं रहे, ऐसा उसको प्रश्नकर्ता को ऐसी आशंका हो जाती है। उत्तर, हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते जब यह कहा जाता है तब उसका आशय यह होता है कि हम उसके निश्चित क्रम में कोई फेर बदल नहीं कर सकते, यह नहीं होता यानी यह अर्थ नहीं होता कि उसके परिणमन के कर्ता भी हम नहीं है। जब हमने कहा ना कि उसमें फेरफार करता नहीं है, परंतु करता नहीं ऐसा किसने कहा, जो जो पर्याय अभी हो रही है उसके हम ही तो करता है। पहले कहा ना, जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, तो वो जीव ही स्वयं उसका करता है, हमारी जो जो पर्याय हो रही है उसके कर्ता हम ही है, तो हम हमारी इच्छा अनुसार कोई चेंज करे तो ही हम करता रहे, अन्यथा हम करता ही नहीं रहे, ऐसे मानता है ये जी। तो उसको कहते हैं कि उसके परिणमन के कर्ता हम नहीं, ऐसा कहाँ है। छठवें प्रश्न के उत्तर में जिन छह शक्तियों की चर्चा की गई है वे द्रव्य की स्व शक्तियाँ ही तो है, उनके कारण ही तो पर्याय स्व समय में होती है, हमने अभी देखा था ना भाव अभाव वगैरह सारी, इसलिए अपनी पर्याय का कर्ता तो द्रव्य है ही, क्योंकि ये द्रव्य ही सिर्फ द्रव्य की शक्तियाँ हैं। कौन से द्रव्य में होगी ये, हर द्रव्य में होगी, क्योंकि हर द्रव्य में पर्याय है तो हर द्रव्य में वर्तमान पर्याय होगी और होने वाली ही होगी, और जो अभी अभाव रूप है वो एक समय में भाव रूप होगी। ये सारी शक्तियाँ प्रत्येक द्रव्य में है। यहाँ 47 शक्तियाँ तो आत्मा की शक्तियों का वर्णन है, हमारे में क्या क्या है, परंतु ये सारे ही सभी 6 द्रव्य में पाए जाएंगे। जिनवाणी में एक अपेक्षा यह भी आती है, जिसमें पर्याय का कर्ता पर्याय को कहा जाता है, द्रव्य को नहीं। ये अपेक्षा सहित अन्य अन्य जगह अन्य अन्य कथन आते हैं, इसका सही अर्थ अपने ख्याल में लेना, कोई भी सर्वथा नहीं समझना। पहले तो हमने यह परिणमित स कर्ता, जो स्वयं परिणमित हो वह कर्ता यानी द्रव्य कर्ता है और पर्याय उसका कार्य, ये चर्चा हमने कर ली। अब यहाँ क्या कहेंगे कि पर्याय ही अपना करता है, क्योंकि वो अभिन्न कारक समझाएंगे वहाँ। तो जिसमें पर्याय का कर्ता पर्याय को कहा जाता है, द्रव्य को नहीं। विकाली उपादान की अपेक्षा पर्याय का कर्ता वह द्रव्य या गुण कहा जाता है। वो त्रिकाली उपादान कौन है उसका, तो द्रव्य है या गुण है। उपादान में भी हम 3 देखते हैं, त्रिकाली उपादान, फिर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो वाला उपादान यानी क्षणवर्ती कहते हैं उसको, क्षणिक उपादान, और तीसरा उस समय की योग्यता वाला उपादान। कि त्रिकाली उपादान की अपेक्षा पर्याय का कर्ता वह द्रव्य या गुण कहा जाता है जिसकी वह पर्याय होती है, और क्षणिक उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता ही कार्य की नियामक होने से, यानी कार्य कौन सा होगा कब होगा ये सब तत्समय की योग्यता वाला वो उपादान है। क्योंकि त्रिकाली उपादान तो हमेशा ही था, वो जीव द्रव्य में स्वभाव तो अनादि से पड़ा था, तो सम्यक दर्शन अभी क्यों हुआ, तो उसका नियामक कौन है, तो उस समय की योग्यता। क्षणिक उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता ही कार्य की नियामक होने से पर्याय को ही पर्याय का कर्ता कहा जाता है। यह पर्याय की स्वतंत्रता की चरम परिणति है, यानी स्वतंत्रता बताने वाली यानी एटमोस्ट वहाँ बताया जाता है, उसकी पर्याय की स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं, जो उसके सहज क्रमनियमित परिणमन को सिद्ध करती है। यानी पर्याय भी स्वतंत्र है, द्रव्य से भी निरपेक्षता बताना है। ये जो सारे अलग अलग अपेक्षा सहित कथन है वो वस्तु का स्वरूप समझ में आने के लिए है, कि पर्याय को सर्वथा द्रव्य से भिन्न वस्तु नहीं साबित करना है, क्योंकि ऐसे वो तो पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, वो तो पर्याय स्वतंत्र ऐसा कहते हैं, वो तो समझाने के लिए बताएगा। वो द्रव्य से कोई अभेद वस्तु अलग नहीं है, कोई एंटिटी अलग नहीं है उसकी। परिणमनशीलता द्रव्य का सहज स्वभाव है, और स्वभाव सदा पर निरपेक्ष होता है। परिणमन करने का तो द्रव्य का स्वभाव ही है, अतः प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। कोई भी द्रव्य एक समय को भी परिणमन से खाली नहीं रहता, यदि एक समय भी परिणमन रुक जाए तो द्रव्य का द्रव्यत्व ही कायम न रहे। द्रव्य का द्रव्यत्व यानी द्रव्यपना क्या है, वो द्रव्य तो गुण की बात नहीं है। द्रव्य का द्रव्यपना अभी पंचाध्याय में बात है ना, पहला अवान्तर अधिकार वो द्रव्य का है, और दूसरे अवान्तर अधिकार में द्रव्यत्व की चर्चा है। द्रव्यत्व यानी द्रव्य का द्रव्यपना क्या है, तो द्रव्य में गुण है और द्रव्य में पर्याय है, ये उसका द्रव्यपना है। तो द्रव्य में वो सत कायम रहने वाला भी अंश है, और उसमें उत्पाद रहने वाला भी, वो परिणमन वाला भी अंश है, ये उसका द्रव्यपना है। तो कहते कि परिणमन यदि रुक जाए, क्योंकि हमने द्रव्य उसी को कहा, द्रव्य कैसा है तो उसका वो कायम रहने वाला अंश और परिणमन वाला अंश। अभी परिणमन वाले अंश को मिटा दो, तो जिसका एक अंश मिट गया तो पूरा द्रव्य ही मिटने का प्रसंग है, द्रव्य के नाश का प्रसंग आ जाएगा। तो उसको कहते कि एक समय भी परिणमन रुक जाए तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, या द्रव्य का द्रव्यत्व ही नहीं रहेगा, द्रव्यपना ही नहीं रहेगा, तो वो द्रव्य भी नहीं रहेगा। ये सारा मान्यता में बुद्धि में इसको हम ऐसा होगा तो क्या, ऐसा हम मानेंगे तो क्या होगा, ऐसे कहेंगे तो क्या होगा, ये चर्चाएं सारी बुद्धि में ज्ञान में रही है। द्रवणशीलता यानी परिणमनशीलता का नाम ही द्रव्य है। हम द्रव किसको कहते हैं, फ्लूइड किसको कहते हैं, विच फ्लोज दैट इज फ्लूइड। वैसे द्रव्य कौन है, जो द्रवता है, तो द्रवना यानी परिणमन होना, उसी को कहते हैं द्रवना। तो द्रवणशीलता यानी परिणमनशीलता का नाम ही द्रव्य है। परिणमन स्वभाव के अभाव में स्वभाववान द्रव्य की सत्ता के अभाव का प्रसंग भी उपस्थित हो जाएगा। ये परिणमन स्वभाव है द्रव्य का, एक कायम रहने वाला स्वभाव है और एक परिणमन स्वभाव है, और वो स्वभाववान कौन है, द्रव्य है। पर्याय द्रव्य यानी परिणमनशीलता, यह द्रव्य का स्वभाव है, वो स्वभाव वाला द्रव्य है। जैसे हम कहते हैं धन है, और धन को धारण करने वाला वो धनवान है, धन वाला है। अब धन नष्ट हो गया तो हम उसको धन वाला भी नहीं कहेंगे, उसका धन वालापना भी नष्ट हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ परिणमन ये स्वभाव है, तो परिणमन स्वभाव का नष्ट हो जाएगा, उसका स्वभाव नष्ट हो जाएगा, परिणमन नष्ट हो जाएगा। तो स्वभाव को धारण करने के द्रव्य करने वाले द्रव्य की भी सत्ता नष्ट हो जाएगी, स्वभाव ही नहीं रहेगा तो स्वभाववान भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि परिणमन स्वभाव के अभाव में स्वभाववान द्रव्य की सत्ता के अभाव का प्रसंग भी उपस्थित हो जाएगा। हाँ, द्रव्य का ही अभाव होने का प्रसंग आएगा। कहते जिस प्रकार शरीर में जो खून दौड़ता है, यदि वह दौड़ना बंद कर दे तो हृदय गति रुक जाने से मनुष्य को मनुष्य की मौत का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। उसी प्रकार यदि किसी द्रव्य का एक समय को भी परिणमन रुक जाए तो उसकी मौत का प्रसंग उपस्थित होगा। और द्रव्य के अभाव के साथ साथ विश्व के अभाव का भी प्रसंग आएगा, क्योंकि छह द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व है। यानी समझो, इस विश्व में से एक द्रव्य नष्ट हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, जाति अपेक्षा हो जाएगी, फिर और पांच हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, विश्व ही पूरा नष्ट होने का प्रसंग होगा। जिस प्रकार खून निरंतर दौड़ता है फिर भी थकता नहीं, क्योंकि दौड़ना ही उसका जीवन है, निरंतर गति करने में ही उसकी सुगति है, उसी प्रकार द्रव्य को निरंतर परिणमन में कोई कठिनाई नहीं आती, निरंतर परिणमन ही उसका जीवन है। उसके लिए यह कोई समस्या नहीं है कि प्रति समय नई नई पर्याय कहाँ से लाएंगे, वे स्वभाव में से सहज आती है, उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता, वे परमुखापेक्षी नहीं है। पर ने उनकी पर्याय लाए, कोई मदद करे, कोई असर करे तो कार्य होगा, इसी परमुखापेक्षिता नहीं है। यदि उन्हें अन्य की अपेक्षा हो तो द्रव्य पराधीन हो जावे या परिणमन उसका स्वभाव न रहे। यदि पराधीनता है तो उसको हमने स्वभाव कहेंगे ही नहीं, उसको जो कर के अधीन है उसको स्वभाव कहते ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती। जिसमें पर की अपेक्षा हो वह स्वभाव कैसा। इसीलिए तो कहा है, यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है, अथवा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, मैं जग का करता क्या काम। आज तो हो गया समय, अभी कल इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये प्रश्नोत्तर होने के पश्चात, यानी इस पुस्तक की चर्चा होने के बाद, ये जो हमने प्रश्नोत्तर दिए थे ना जीरोक्स कॉपी, वो लाना, ये कल या परसों लाना, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों की, प्रश्न और उत्तर जो लिखे हैं वो देवेंद्र भाई ने दिए थे ना सबके पास, उनके दिए के सबने, उसको बता दो किसका क्या है। हाँ, हंसने से क्या होगा, उसकी क्या बात है इसकी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक न हो सना।